नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। संयुक्त राष्ट्र की उप प्रमुख अमीना मोहम्मद ने भारत सरकार और नीति आयोग की देश में सतत विकास लक्ष्यों को उल्लेखनीय स्तर तक स्थानीय बनाने के लिए तारीफ करते हुए कहा कि जैसे ही भारत सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा और लक्ष्यों को हासिल करेगा, वैसे ही ये क्षेत्र और दुनिया भी इस देश में आगे बढ़ेगी। नमस्ते से अपना संबोधन शुरू करते हुए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को कहा कि सतत विकास लक्ष्यों SDG में ये माना गया कि दुनिया अभूतपूर्व स्तर पर आपस में जुड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव ने कहा, भारत में परस्पर रूप से जुड़े होने के संदेश को केंद्र से लेकर राज्यों और जिलों तथा व्यक्तिगत घरों तक जिस तरह तक अपनाया गया, वह वाकई शानदार है। मैं SDG को इस उल्लेखनीय स्तर तक अपनाने के लिए भारत और नीति आयोग की सराहना करती हूँ। सरकार के सभी स्तरों में योजना, बजट और निगरानी ढांचों में संकेतिक एवं लक्ष्य अंतर्निहित है। वह SDG स्थानीयकरण के भारतीय प्रारूप 2030 एजेंडा के पूर्ण क्रियान्वयन की ओर पर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच के एक विशेष भारतीय सत्र में बोल रही थीं। बुधवार को इस कार्यक्रम का आयोजन नीति आयोग, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, भारत और भारत में संयुक्त राष्ट्र ने किया था। इस कार्यक्रम को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और UNDP की अवर महासचिव और सहायक प्रशासक उषा राव मोनारी ने भी संबोधित किया। व्हाइट हाउस ने कहा था कि COVID-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पश्चिम एशिया की यात्रा के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बुधवार को इसराइल पहुंचने के बाद राष्ट्रपति अपने पुराने तौर तरीके अपनाते ही दिखे। राष्ट्रपति बाइडेन ने विमान से उतरने के बाद पहले तो फिस्ट बम्प से अभिवादन किया और इसके तुरंत बाद ही वह इसराइल के प्रधानमंत्री यायर लापिड के गले लग गए। पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हाथ मिलाया। बाइडेन की सऊदी अरब की यात्रा से पहले एक बार फिर निकट संपर्क को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बाइडेन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हाथ मिलाएंगे या नहीं, इसको लेकर भी कई सवाल हैं, क्योंकि अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने शायद एक आलोचक की हत्या किए जाने की अनुमति दी थी। हालांकि COVID-19 संबंधी नियमों की आड़ में बाइडेन को क्राउन प्रिंस के साथ परेशानी खड़ी करने वाली स्थिति से बचने का मौका मिल गया है। नियमों की आड़ में बाइडेन उचित दूरी बनाते हुए सलमान से भेंट कर पाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पश्चिम एशिया की अपनी यात्रा के तहत बुधवार को इसराइल पहुंचे। शुक्रवार को उनका सऊदी अरब जाने का कार्यक्रम है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे मालदीव में हैं और उन्हें माले से सिंगापुर जाना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से वह सिंगापुर एयरलाइन के विमान पर सवार नहीं हो सके। मीडिया में बृहस्पतिवार को प्रकाशित खबर के अनुसार गोटबाया अब एक निजी विमान का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बुधवार को इस्तीफा देने की घोषणा की थी, पर देश छोड़ने के कुछ घंटों बाद ही उन्होंने प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया था, जिससे राजनीतिक संकट गहरा गया तथा सरकार विरोधी प्रदर्शन और उग्र हो गया है। संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने ने कहा कि राजपक्षे ने रानिल विक्रमसिंघे को तब तक राष्ट्रपति का दायित्व निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है जब तक वह बाहर हैं। डेली मिरर की खबर के अनुसार राजपक्षे, उनकी पत्नी लोमा और दो सुरक्षा अधिकारी बुधवार रात को माले से उड़ान संख्या SQ-437 के जरिए सिंगापुर के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से वे विमान पर सवार नहीं हुए। खबर में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि राजपक्षे अब एक निजी विमान का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अभयवर्धने ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति राजपक्षे से अभी तक इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के समर्थन में पूर्वी यूक्रेन सहित दो अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी है। ऐसा करने वाला वह दुनिया के कुछ देशों में से एक है। इसकी प्रतिक्रिया में यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने उत्तर कोरिया से कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए हैं और प्योंगयांग के निर्णय को यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमला बताया है। यूक्रेन संकट के लिए उत्तर कोरिया लगातार अमेरिका को दोषी ठहराता रहा है और ये दावा करता रहा है कि पश्चिमी देशों की दमनकारी नीतियों के कारण रूस ने अपने बचाव में यूक्रेन पर हमला किया। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश के विदेश मंत्री चो सुन हुई ने एक दिन पहले यूक्रेन से अलग हुए दोनेत्स्क और लुहांस्क के नेताओं को पत्र लिखकर उनकी स्वतंत्रता को मान्यता देने की बात कही। उत्तर कोरिया ने इन दोनों अलगाववादी क्षेत्रों के साथ कूटनीतिक संबंध विकसित करने की इच्छा भी जाहिर की। दोनेत्स्क के अलगाववादी नेता डेनिस पुशिलिन ने बुधवार को उत्तर कोरिया के निर्णय पर संज्ञान लिया। लुहांस्क और दोनेत्स्क मिलकर डोनबास क्षेत्र बनाते हैं, जहां ज्यादातर रूसी बोलने वाले लोग हैं और इस्पात के कारखाने, खदानें, अन्य उद्योग स्थित हैं। दोनों ही प्रांत 2014 में अलगाववादियों के कब्जे में थे और फरवरी में रूस के आक्रमण से पहले ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनकी स्वतंत्रता को मान्यता दे दी थी। सीरिया ने भी उनकी स्वतंत्रता को मान्यता दी है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।